नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन पैटर्न की और जो यूपीएससी की कोचिंग जो चल रही है वो जो उसका जो इम्पैक्ट हो रहा है जिसके ऊपर नीरज अत्री जी से आज हम बात करेंगे। आपका स्वागत है नीरज जी।
नमस्ते संजय जी, बहुत बहुत आभार मुझे बुलाने के लिए और सभी दर्शकों को भी नमस्कार।
तो ये जो यूपीएससी के जो कोचिंग अकेडमी चल रही हैं, मेरा एक ऑब्जर्वेशन था कि जिस प्रकार की शिक्षा ये देती हैं, आप उसके बेहतर बताएंगे किस प्रकार की शिक्षा देती हैं ये, विशेषकर जो कि यूपीएससी में जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं या हिस्ट्री के, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस इत्यादि के पेपर होते हैं, उसके बारे में जो भारत के बारे में जो बताते हैं और भारतीय परंपरा के बारे में जिस प्रकार से बताते हैं। मैं इस बार का क्वेश्चन पेपर्स इस बार देख रहा था, तो मैंने देखा इस बार के जो क्वेश्चन पेपर्स थे यूपीएससी के, वो काफ़ी कुछ न्यूट्रल जैसे दिखे मुझे। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी बताएंगे कि उनका क्या इसका आकलन है, यदि उनमें से कोई इस परीक्षा में गया हो तो यदि इस प्रकार का हो जाएगा तो ये जो कोचिंग दे रहे हैं उसका क्या होगा?
जी, अगर ये ऐसा करेंगे तो फिर ये जो बड़ी बड़ी दुकानें खुली थी, जो प्राइमरीली वो क्या कर रहे थे, एक जो झूठा नैरेटिव क्रिएट किया गया उसी के आधार पर ये दुकानें चल रही थी। तो यदि सरकार न्यूट्रल हो जाती है, जो कि हमारा सदा से ही कहना रहा है कि आप प्रो सनातन धर्म नहीं भी होते हैं तो केवल सच की बात करने योग्य न्यूट्रल ग्राउंड पर भी यदि आ जाते हैं तो वो सफिशियंट है। फिर उससे ये जो इनकी दुकानदारी चलती है, और दुकानदारी मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि जब हम अगर हम हिस्ट्री की बात करें स्पेसिफिकली, जहां पर सबसे ज्यादा ये खेल खेलते हैं, वहां पर इंटरप्रिटेशन आ जाता है कि जो ग्रे एरिया है वहां पे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, अपने ढंग से चीजें लिख सकते हैं, चीजें बता सकते हैं। तो अगर सरकार न्यूट्रल भी हो जाती है और या बल्कि मैं कहूँगा फैक्चुअल हो जाती है, तो इनकी जो ये इंटरप्रिटेशन वाली खेल है, जो कहानी है, वो बंद हो जाएगी। और मुझे लगता है कि आपका मेरा जो हम ये स्ट्रीम्स कर रहे थे, इसके बारे में बात करते थे, वो सब सार्थक होगा, क्योंकि इन्होंने लगभग दो पीढ़ियों को इस तरह के झूठे नैरेटिव से पूरी तरह से, जिसे कहते हैं, डीरेसिनेट कर दिया है कि जो तो सक्सेसफुल होके जाते हैं, आईएएस में चले जाते हैं, उनमें आप जैसे कुछ कम होते होंगे जो अपनी परंपराओं में रूटेड थे, वो तो बचे रहते हैं, लेकिन अदरवाइज देखें तो जो अपने जो सिविल सर्विसेज वाले लोग हैं, वो बाय एंड लार्ज आपको वो भी उसी वोक कल्चर के दिखाई देते हैं। इवन जुडिशरी भी आपको वैसी दिखाई देती है, क्योंकि एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया गया कि वो निकलेगा। अब ये जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस में चले जाते हैं, वो लगभग 25-30 वर्ष तक वहां रहने वाले हैं। और आज तक हम जब लीडरशिप की बात करते थे तो मोटे तौर पर लोग उसको पॉलिटिकल लीडरशिप ले लेते, लेकिन ये ज्यादा बड़ी, ज्यादा एंड्यूरिंग लीडरशिप है जो आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स की है, क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाले। एक बार आ गए, वो 20-25-30 साल तक, 30 से भी ज्यादा वर्ष तक उसमें रहते हैं और वो पॉलिसीज को डिक्टेट करते हैं। और ये तो एक पक्ष हो गया आपका। दूसरा पक्ष है कि जो लोग क्लियर नहीं करते, वो जीवन भर उस तरह की सोच को अपने साथ लेके चलते हैं, क्योंकि हालांकि वो सिविल सर्विसेज में तो फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि उनका जो थिंकिंग एबिलिटी है, जो एनालिटिकल स्किल्स है, वो बाकियों से बेटर है। वो कितनी होती है वो एक डिबेटेबल पॉइंट है, लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्शन इन कोचिंग दुकानों में से पूरी तरह से डीरेसिनेट होके निकलता है। तो यदि न्यूट्रल भी हो गया तो मैं कहता हूँ एक बहुत अच्छी, एक सकारात्मक शुरुआत में से कह सकते। जी सर
जी, लेकिन ये जो इनके जो मेथड हैं उसके बारे में आपने काफी अध्ययन कर रखा है, तो थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार से ये जो विद्यार्थी इनके यहाँ जाते हैं उनको ये भ्रमित करते हैं और उनको एक तरह से देश के विरुद्ध और भारतीयता के विरुद्ध भड़काते हैं।
उसमें अगर हम मोटा मोटा देखें तो हम इन्हें चार कैटेगरीज में स्प्लिट करते हैं, जो ये जिस तरह से नैरेटिव को पुश करते हैं, जो फॉल्स नैरेटिव जिसे हम कहते हैं, कि एक तो आ जाता है वो जो एट्रोसिटी लिटरेचर है, कि ये बताना कि जो भारतीय समाज था ये तो सदा से जात पात में बटा रहा, और जिस समय ये विदेशी मजहब आए यहाँ पर तो हम एक बहुत सोशल डिक्लाइन में जा चुके थे, समाज बिल्कुल अस्त व्यस्त था। तो इस्लाम आया और क्रिश्चियनिटी आई, उन्होंने आके यहाँ पर इस बिल्कुल गिरी हुई सिचुएशन को संभालने का काम किया। और इसको अगर आप देखें तो इनका ट्रिक क्या होता है कि कभी भी इस्लाम की जो कोर टीचिंग्स है उनको टच नहीं करेंगे। बड़ी बहादुरी से ये 8-10 तो फेमस लोग हैं जो हमें यूट्यूब पे दिखाई दे जाते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो इसी इसी टोन पे काम करता है, कि वो इस्लाम की क्रिश्चियनिटी की असलियत नहीं बताते, क्योंकि वहां पर एक तो उनका नैरेटिव डिस्टर्ब होता है, दूसरा उसके लिए बहुत साहस चाहिए होता है कि सच बता सके, तो उसको राउंड अबाउट वे में
इतना
घुमा
अध्ययन भी
के।
नहीं होता, वो सतही होते हैं, वो भी रट्टे वाले ही होते हैं आपके। ज़्यादातर मैंने देखा है कि यूपीएससी की जो कोचिंग होती है वो वही रटी रटाई बातें बताते हैं जो उनको मिल जाती हैं ऑटोमेटिक, पकी पकाई।
जी वो तो है ही, लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी है ना, जब आप समझ लीजिए आप कोचिंग देने वाले हैं, पीपल आर लुकिंग अप टू यू, और वो भी सिविल सर्विसेज, जहां पर ना केवल आपको डेप्थ चाहिए होती है बल्कि ब्रेड्थ भी चाहिए होती है, तो अगर आप उस ब्रैकेट में एक अच्छे सफल टीचर बनते हैं तो मुझे यहाँ पर आपकी बात से थोड़ा सा मैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखूंगा कि पढ़ते तो वो भी होंगे डेफिनेटली, क्योंकि कोई इतनी बड़ी लिटरेचर नहीं कि वो पढ़ के उसको समझ नहीं सकते, तो वो आप बताइएगा कि आपको ये कैसे लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि पूरी डिसऑनेस्टी है, जैसे एक वो बड़ा फेमस आदमी है वो बोलता है कि मोहम्मद साहब जो इस्लाम आया वो तो कुरान शुरू ही इकरा से होती है, वो जो एक इकरा वर्ड आता है, अब ये सबसे बड़ी देखिए कितनी बड़ी नॉनसेंस है ये। इस्लाम का बेसिक क्लेम क्या है कि कोई एक गॉड है, सातवें आसमान पे बैठता है, वो पैगंबर को चुनता है, और चलिए ये भी मान लेते हैं कि पैगंबर को चुनता है। अब चुना किस लिए है कि उसका मैसेज को स्प्रेड, उसके मैसेज को स्प्रेड करना, उसके लिए किताब है, किताब पढ़नी है, चलो ये भी समझ में आ जाता है, लेकिन चुनता किसे है, एक ऐसे आदमी को जो पढ़ा लिखा ही नहीं है। अब इतनी कॉमन सेंस तो एक आम आदमी में भी होती है कि यार इतनी इतना बड़ा अंधविश्वास तुम कैसे चला सकते। कहता है जी कि इस्लाम आया, इस्लाम का नूर आया, इकरा से शुरू होता है, तो हम तो सारी पढ़ने की बात करते हैं। तो एक तो ये थ्योरेटिकली, अगर आप बिल्कुल थ्योरेटिकली भी देखते हैं कि ऐसा कोई गॉड हो सकता है जो ऑल नोइंग है, फिर वो एक अनपढ़ आदमी को चुन लेता है, वो भी एक रेगिस्तान में जाके, जहां की भाषा उस समय 99% से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होगी, तो इसमें इनका वो इग्नोरेंस होगी, मान सकते हैं एक फैक्शन इग्नोरेंस का हो, एक फैक्शन इग्नोरेंस का हो सकता है, लेकिन थोड़ी भी सहज बुद्धि अगर वो लगाएगा कि किसी ने अगला क्वेश्चन उनसे पूछ लिया तो क्या बोलूंगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इनको समझ तो होती होगी, ये मक्कारी करते हैं वहां। तो अब इकरा बोल दिया, बोला किसे, अनपढ़ को। अब ये कितना इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है कि एक ऐसा फरिश्ता आ रहा है जो ना दिखाई दे रहा ना सुनाई दे रहा है, वो उसे कहता है इकरा, मोहम्मद का कपड़ा पकड़ के बोलता है माँ इकरा, कि मुझे तो पढ़ना नहीं आता। तो ये भी तो बताओगे ना कि अगर शुरू इकरा से हुआ है तो उसका जवाब जो मोहम्मद है उसने माँ इकरा दिया, जो उनका आइडियल है उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो ये भी तो बताओ आगे। ये है जहां पर ये खेल खेलते हैं कि जो बिल्कुल जहां पर इग्नोरेंस है, जहां पर पढ़ने लिखने की कोई ट्रेंड नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, उनका कहना एक ही किताब में सारे का सारा इल्म आ जाता है, उसको तो ये घुमा फिरा के ऐसे दिखाता है कि बड़ा इगैलिटेरियन है, बड़ा बराबरी वाला मजहब है। लेकिन जब बात हमारे देश की आती है, हमारी डिवर्सिटी की आती है, वहां पर ये सिर्फ वो जातिवाद वाले नैरेटिव को बार बार रीइन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं, और उसमें भी करते कैसे। अब इसमें इनकी सफलता का कारण क्या समझेगी, क्योंकि मैं टीचर रहा हूं, अगर तो आपको रिजल्ट लेके आना है तो आप बिल्कुल मेरिट पे बात करेंगे, जो किताबों का कंटेंट है उस पर बात करेंगे, उसमें भी मेरिट है तो उसमें भी चलता है। लेकिन जो क्रीम होती है वो बहुत गिनी चुनी होती है, और आईएएस में तो वैसी बहुत थोड़ी सी परसेंटेज है। तो अगर आप केवल उसे केटर करेंगे तो आपने जो करोड़ों का टर्नओवर बना ना, वो कभी नहीं बनेगा। तो जो बाय एंड लार्ज मीडियोकर बच्चा होता है, उसे आपने गुड ह्यूमर में रखना। गुड ह्यूमर में रखने का जो सबसे पहला आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो होती है वाक्पटुता। आप कैसे बातें बना के बच्चों को चुटकुले सुना के उनको इंटरेस्टिंग, अपने साथ इंटरेस्टेड रख सकते, तो वो चालबाजी इन लोगों ने सीख रखी है। बच्चे बेचारा इनको गुरु समझ के देखता है, शिक्षक समझ के देखता है, और वो बाचाली जो क्या बोलते हैं, स्ट्रीट स्मार्टनेस बोल सकते हैं, वो इनमें बहुत अच्छी है। एज अ रिजल्ट ये जो झूठ भी बोलते हैं वो सच के ढंग में प्रेजेंट किया जाता है। इसलिए ये जो कोचिंग फ्रॉड है जिसकी हम इतनी बार बात कर रहे हैं, वो इतना डेंजरस है कि समाज को बहुत गलत दिशा में लेके जा रहा है। तो ये तो एक बात मैंने की कि ये बाहर की जो हेटफुल आइडियोलॉजीज है, क्योंकि किताबों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो ह्यूमैनिटी को दो हिस्सों में बांटती हैं जो हमेशा लड़ते रहे। क्रिश्चियनिटी ने भी यही किया, आज इस्लाम उसका ज्यादा वोसिफर, ज्यादा लाइव एग्जाम्पल हमें दिखता है, तो उन्हें पुश करते हैं। लेकिन अपनी जो परंपराएं हैं जो एक्चुअली में प्लूरलिस्टिक है, इंक्लूसिव है, जो आज के जितने बजवर्ड्स हैं जिनको वो सेटिस्फाई करते हैं, उनको डेमोनाइज करते हैं। ये इनका पहला एक ट्रिक है उसे दिखाने का। तो वो सो कॉल्ड अपर और लोअर कास्ट का डिवीजन यहां पैदा है। दूसरा आ जाता है जो मेल फीमेल का, के जो सनातन धर्म है, हमारे देश की ट्रेडिशंस है, वो महिला विरोधी है, मिजोजिनिस्ट है, उसको पुश करते रहते हैं बार बार कि सती प्रथा थी हमारे यहाँ पे। तो ये दूसरा इनका लाइन ऑफ एक्शन है जिसपे काम करता है कि फॉल्ट लाइंस को बढ़ाने का। तो अगर हम सिर्फ इन दो को देखें, पहले ने समाज को अपर और लोअर कास्ट में डिवाइड किया, जिसमें सारा मीडिया, सारा एजुकेशन सिस्टम भी काम कर रहा था, ये उसको रिइंफोर्स करते। और दूसरा जो महिलाओं वाला आ जाता है कि अब आपने पूरी पॉपुलेशन को दो इक्वल हिस्सों में बांट दिया और आप उनको हॉस्टाइल दिखा रहे हो, विच इज अ वेरी बैड आइडिया। कि अगर तो ये सच होता ना कि एक बैटल ऑफ सेक्सेस चल रहा था, शुरू से ही चल रहा था, हम उसको मान लेते, लेकिन अगर ऐसा होता तो ह्यूमैनिटी थ्राइव ही नहीं कर सकती, और स्पेशली हमारे जैसा देश जहां पर पूरी जीडीपी का 1/3, 33% हम करते रहे हैं, वहां पर अगर एक बैटल ऑफ सेक्सेस होती है कि पुरुष और महिला आपस में लड़ते रहे, तो हम कभी भी वो प्रॉस्पेरिटी अचीव कर ही नहीं सकते थे जो हम जानते हैं कि हमने अचीव की थी। तो सारा जो ये नैरेटिव दिखा रहे हैं, जो झूठ बच्चों को पढ़ाते हैं, वो है कि आपकी ये जो एक आइडेंटिटी है कि अगर आप एक लड़की हो, एक मेड फीमेल हो, तो आप मेल और फीमेल की बाइनरी में काम करोगे, उसमें आप माँ और बेटे के रिलेशन को नहीं देखोगे, आप पति और पत्नी के रिलेशन को नहीं देखोगे, आप बाप और बेटी के रिलेशन को नहीं देखोगे, आप सिर्फ लड़का और लड़की वाले रिलेशन को देखोगे। और जब बच्चा है 22, 23, 24 साल का है, 25 साल का है, वो इसमें इनकी वाक्पटुता के कारण फंस भी जाता है, क्योंकि जब वो फ्लो के साथ अपनी बात रख रहा होता है तो बच्चा उसको बाय कर लेता है, क्योंकि अभी उसमें डिसर्निंग एबिलिटी उतनी बड़ी नहीं होती है। कुछ में होती है, लेकिन ओवरऑल ऐसा बच्चा जो उसका टेक होम होता है वही होता है कि हम एक बहुत ही खराब सोसाइटी का पार्ट रहे हैं, हमारी हिस्ट्री बड़ी खराब थी। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये सच होता तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन क्योंकि ये सारा झूठ के बेसिस पे चलता है, इसलिए इसको रोकना, इसपे इसका प्रतिकार करना, इस पे प्रतिबंध लगाना बहुत आवश्यक है। संजय जी,
जी, तो जैसे कुछ उदाहरण आपने निश्चित रूप से, आपने तो पूरे इसके ऊपर एपिसोड्स किए हैं, ख़ास तौर से एक जो दृष्टि है उसके पास दृष्टि नहीं है, एक विज़न है जिसके पास विज़न नहीं है, और उसके अतिरिक्त छोटे छोटे बहुत से हैं। और आप देखें कि जो बहुत पॉपुलर हैं, जैसे एक सबसे पॉपुलर जो यूट्यूब पे है वो है खान GS रिसर्च सेंटर, जिसको जो है वो उसके एक एक वीडियो के व्यूज़ जो है वो आप करोड़ों में पाएंगे।
हाँ
तो मैं अभिषेक जी से मैंने पता किया तो उन्होंने बताया कि ये तो बात सही है कि वो ठीक है और वो न्यूट्रल भी है, वो इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें नहीं करता, लेकिन उसके सेंटर से 3 साल से एक भी आईएएस में पास नहीं हुआ है। और ये जो दृष्टि और विजन है, अभी मैंने उस दिन अजीत कुमार सिंह जी के साथ में एक किया था, उस दिन उनकी कुछ इंटरनेट ठीक नहीं था, तो उसमें एक नीट की एक छात्रा का एक हमने उदाहरण दिया था जिसमें उसको कम से कम तीन, वो प्रथम आई है बच्ची नीट में, तो उसको तीन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने क्लेम किया कि वो उसके यहाँ से पढ़ी हुई है। अब इस तरह के फर्जी क्लेम चलते हैं, और आपके ऑनलाइन का जैसे बायजूस का है, बायजूस कहता है कि आपके लिए हिंदू पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, उसका जो डेली का आता है, मैंने जिस जानकारी करने के लिए उसको सब्सक्राइब कर दिया था, उसका जो न्यूज़लेटर आता है, उस न्यूज़लेटर में डेली लिखा हुआ आता है कि हिंदू इज एब्सोल्यूटली क्रिटिकल टू योर प्रिपरेशन, दी हिंदू। और अब उदाहरण दें कि अब ये दी हिंदू को पढ़ के बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। मैं उदाहरण देता हूँ आपको, मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन पे, जरा स्क्रीन शेयर कीजिए। मैं ये पेपर है इस वर्ष का, जनरल स्टडीज फर्स्ट। अब इस जनरल स्टडीज फर्स्ट में हिंदू पढ़ के आप क्या कर पाएंगे, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। कि पहला प्रश्न इसमें, जैसे ये इसमें अधिकतर ये आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी इत्यादि के ही क्वेश्चन आते हैं पहले पेपर में, हाउ विल यू एक्सप्लेन, स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। अब इसके लिए आपको पहले तो मूर्तिकला और स्थापत्य की जानकारी होनी चाहिए, यह भी जानकारी होनी चाहिए कि जो भारतीय मूर्तिकला और स्थापत्य है वो भारतीय आध्यात्म को चित्रित करती है, और उस समय का जो समाज था वो कैसा था यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें हिंदू क्या करेगा, ये तो जनरल स्टडीज का पेपर है, सबके लिए है। जी
संजय जी, इसमें ये पता क्या है, उन्होंने बड़ी अच्छी ढंग से ये इस प्रोपेगेंडा को ऑलमोस्ट मैं कहूंगा परफेक्ट बना लिया है कि उन्हें आज अगर हमारे देश में जितने न्यूज़पेपर्स हैं, जितने प्रिंट मीडिया है, स्पेशली जो इंग्लिश लैंग्वेज वाला, वो तो सारे का सारा एंटी हिंदू है। एक भी नहीं है जो आप बच्चे को रिकमेंड कर सकते हैं कि यार ये पढ़ेगा तो तुझे जेन्युइन जो सच्ची बातें हैं वो पता लगे। लेकिन द हिंदू उनमें बिल्कुल एक्सट्रीम पे चला जाता है, जो कभी भी आपको, जैसे मैं एक सदा ही चैलेंज दिया करता हूँ कि जो अभी की करंट एनसीईआरटी की किताबें हैं उनमें आप मुझे एक सेंटेंस ऐसा दिखा दो जो भारतीय परंपराओं की प्रेज करता। तो सिमिलरली द हिंदू में आप कोई एक ऑप-एड, एक आर्टिकल ऐसा दिखा दो जो यहाँ की परंपराओं को पॉजिटिव लाइट में दिखाता हो। मेरा चैलेंज है सभी दर्शकों से, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। तो लेकिन उन्होंने किया क्या, एक तो उनकी लिखने की शैली अच्छी है, हमें इनको ये समझना चाहिए कि उनकी विशेषता क्या है। लिखने की शैली बड़ी अच्छी है, अंग्रेजी बड़ी अच्छी, बड़ी इंप्रेसिव, बड़े बड़े शब्द यूज करते हैं उसमें। तो एक बच्चा जो बी सी डी टीयर सिटी का है, वो जब उसे पढ़ता है तो वो एक तो पहले से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होता है, दूसरा और आ जाता है। अब उसका आईएएस क्लियर होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, जो आप बता ही रहे हैं कि जो इतने फेमस है वो कभी क्लियर ही नहीं करवा पाते। लेकिन वो इससे प्रभावित हो जाता है, और क्योंकि पहले ही उसके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है तो वो हिंदू का जो नैरेटिव है उसको और इंटरनलाइज करता है। और ये अकेला बायजूस नहीं बोलता संजय जी, ये मैक्सिमम जो कोचिंग सेंटर वाले हैं वो सलाह ये देते हैं कि भैया तुमने अगर जनरल अवेयरनेस सीखनी है ना तो द हिंदी को रेगुलरली सब्सक्राइब। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये मेरा ऐसा अनुमान है कि 70% से ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो द हिंदू को पढ़ने का प्रयास करते हैं, वो कुछ नहीं पढ़ पाते लेकिन पढ़ने का प्रयास अवश्य करते हैं, और उनका जो वर्ल्ड व्यू है उसी के कारण बदल जाता है। तो वो सफलता या असफलता का मानदंड नहीं है, वो उसके लिए रेफर भी नहीं करते हैं वो रेफर करने का उद्देश्य ये होता है कि वो नैरेटिव वो वाला चल रहा है जिसको बच्चा फॉलो करेगा और वो परमानेंटली डीरेसिनेट हो जाएगा, वो अपने समाज से कट जाता है।
जी, और जो लोग देख रहे हैं और यूपीएससी एग्जाम देने की इच्छा रखते हैं, उनको मैं कम से कम अपने अनुभव से ये बता दूं कि मैंने तो उस समय जबकि लेफ्ट का राज था, यानी कि मैंने तो 84 और 85 में एग्ज़ाम दिया था, तो उस समय तो लेफ्ट का एक तरह से एकेडमिया पे पूरा राज था। मैंने उस समय भी दी हिंदू तो नहीं पढ़ा था, और उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया काफ़ी न्यूट्रल सा हुआ करता था और गिरिराज जैन जैसे उसके संपादक हुआ करते थे, तो मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया ही पढ़ता था। और आज भी जो लोग इसको कर रहे हैं उनको मैं ये स्पष्ट सलाह दूंगा अपनी तरफ से कि द हिंदू कभी मत पढ़िएगा।
हाँ
अगर अंग्रेजी पेपर आपको पढ़ना ही है तो द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस नहीं, इंडियन एक्सप्रेस तो पूरी तरह से लेफ्टिस्ट है, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस जो है वो फिर भी थोड़ी सी बैलेंस्ड है। वैसे तो पूरा का पूरा
बिल्कुल
जो मैकॉले वर्ल्ड है वो पूरा ही का पूरा अनबैलेंस्ड है, लेकिन इन सब में जो थोड़ा बहुत बैलेंस है वो या तो द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में या दी पायोनियर में। इसके
हाँ मैं वही
अतिरिक्त
कहने लगा था। ठीक बात है
जी
के पायनियर है जो थोड़ा सा बचा हुआ है। एक समय था जब इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूट्रल रहते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल वो लेफ्टिस्ट जा चुके हैं। अब केवल पायनियर, और ये भी वो जो संजय जी कह रहे हैं ना कि बिल्कुल एक क्वालिफिकेशन के साथ है कि पायनियर है या द न्यू इंडियन एक्सप्रेस है, उसमें भी थोड़ा सा अंश बचा है जो आपको जेन्युइन दिखेगा। नहीं तो वहां पर भी ये जो कामी वामियों वाला जो टेट है वो बड़ा स्पष्ट है। आम बच्चे को नहीं दिखेगा, लेकिन हम जो देखते रहते हैं, हम तो जानते हैं कि इस वहां पर बहुत सारी चीजें गलत है। तो द
आपकी
हिंदू से
आवाज
तो
कम हो गई
डेफिनेटली
अचानक।
बच के रहिए, उसको तो बिल्कुल फॉलो मत करें, और हिंदुस्तान टाइम्स को भी छोड़ दें, क्योंकि एक सब हिंदुस्तान टाइम्स क्या, तो क्या ओनरशिप से ही आप देख सकते हैं कि वो कभी भी न्यूट्रल नहीं रहेगा। लेकिन संजय, फिर अगला क्वेश्चन बच्चों का कि हम फिर कहां पे रिलाई करें, किस चीज पे रिलाई करें इसके लिए।
आपकी आवाज कम ज्यादा हो रही है अचानक। जी हाँ बोले। हाँ
मुझे ऑडियो की कुछ प्रॉब्लम आ रही है संदीप, सुन नहीं पा रहा हूं।
अब ठीक है, अब आपकी आवाज़ ठीक आ रही। हेलो हेलो।
मुझे, मैं नहीं सुन पा रहा हूं।
आप
संजय,
हेलो
मैं एक
हेलो
बार
हेलो।
लीव करके दोबारा से आता हूं।
ओके आइए आइए। तो मैं तब तक आपको यह प्रश्न पत्र एक बार फिर से दिखा देता हूँ, जो लोग देख रहे हैं इस समय। यह जो प्रश्न पत्र है इसको आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें ये पूरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे है और कुछ पॉलिटिकल और सोशियोलॉजिकल हिस्ट्री पे भी है। ये देखिए, अब इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जब तक आपको सनातन की जानकारी नहीं होगी तब तक आप जान ही नहीं पाएंगे। जैसे पहले 10 प्रश्न जो हैं उनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। अब 150 शब्द का मतलब होता है कि आप मान लीजिए कि 4 या 5 लाइन, 4 5 लाइनों में आपको उसका उत्तर देना है। और फिर जो 11 से 20 जो है वो है 250 शब्द वाले, और 250 शब्द का मतलब होता है आपको 10 12 लाइनों में उसका उत्तर देना है। अब भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान पर चर्चा करें। अब यह तो हिंदू के माध्यम से तो आप नहीं सीख सकते, जनरल स्टडीज के पेपर की बात हो रही है। जी नीरज जी
मैं वही आप वाली बात ही मैं कह रहा था कि ये बच्चों को एक तो भ्रमित किया जाता है कि आपको इस तरह के अखबार पढ़ने चाहिए। अब देखिए, द हिंदू मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पेजेस छापने वाला अखबार है, तो बच्चा जब उसमें, एक तो उसका टाइम इतना सारा वेस्ट होता है, प्लस जो उसकी माइंड स्पेस है, जितने बच्चे यहाँ पर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या उनके अभिभावक हैं, वो दो चीजें याद रखें कि जब आप इतना बड़ा अखबार पढ़ते हैं और स्पेशली हिंदू जैसा जो कि बाइस्ड है, तो दो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो बच्चे का बहुत गोल्डन टाइम है जो वहां पर वो वेस्ट कर रहा है, दूसरा उसका माइंड स्पेस जो है वो एक गलत नैरेटिव ऑक्यूपाई कर लेगा, तो बच्चा कभी सिविल सर्विसेज क्रैक नहीं कर पाएगा। तो ये आप पहले ये मान लें कि द हिंदू जैसे अखबारों से तो बच के रहें, इन्हें घर में लाना ही नहीं है आपको, क्योंकि जैसा अभी संजय जी भी बता रहे हैं कि इससे आपको ऐसी कोई चीज नहीं सीखने को मिलने वाली जो आप जनरल स्टडीज इससे क्रैक करें। जो आपका जो ओवरऑल जनरल अवेयरनेस है, ऐसे बच्चे हैं जो उत्तराखंड में गढ़वाल में जहां पर द हिंदू कभी जाती इंग्लिश अखबार ही नहीं, वहां पे हिंदू जगह पहुंचते, वो बच्चे क्रैक कर लेते हैं। तो ये अपने आप में साक्ष्य है आपके लिए कि आपको इस तरह के लेफ्टिस्ट अखबार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आप सिविल सर्विसेज को क्रैक करना चाहते।
अब हमारे जो इकरा वाले हैं, अवध ओझा जी, जो संभवतः विजन चलाते हैं, दृष्टि तो हमारे दिव्य कीर्ति जी चलाते हैं, जो अब मानने लगे हैं कि वो उन्होंने एक्चुअली सिविल सर्विसेज क्लियर नहीं किया था। अब
वो आपके संजय जी, वो आपका प्रताप है, आपने हाँ
मैंने जो प्रश्न पूछा था तो उन्होंने मुझे तो उत्तर नहीं दिया, लेकिन अब पब्लिक को बताने लगे हैं कि वो जो थे, और उसको बहाने से बताते हैं कि वो आईएएस मेन में नहीं आ पाए इसलिए नहीं गए। सीधी सी बात ये कि वो क्लियर नहीं कर पाए इसलिए नहीं गए। नेचुरली जब
और
क्लियर नहीं कर
दूसरी
पाए,
संजय, इसमें दूसरी क्लियर बात ये भी है कि वो 25 साल से झूठ भी बोल रहा था।
25 साल से झूठ बोला था।
उसने जो ऑरा अपना क्रिएट कर रहा था कि 96 में पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, ये सारा दुकानदारी चलाने का ही तो प्रपंच है ना, कि झूठ बोलोगे तो बच्चा प्रभावित होगा। आपने अगर ये बात नहीं छेड़ी होती तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आज भी लोगों को यही बता रहा होता कि मैंने क्लियर किया। तो ये तो आपको साधुवाद है कि आपने वो कपड़े उसके उतार दिए उस एंगल पे। जी
और इसी के अवध ओझा जी जो हैं, इसका कैसे उत्तर बताएंगे कि जिसने भी अवध ओझा के यहाँ पढ़ा होगा, मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ कि जो 13वां प्रश्न है, जिसको मैं स्क्रीन पर शेयर करता हूँ, आप ये देखें, ये 13वां प्रश्न है कि भारतीय मिथक कला और वास्तुकला में सिंह एवं वृषभ की आकृतियों के महत्व पर विचार करें। अब ये है प्रश्न जो है, जब तक आप सनातन की जो प्रतीकवाद है या जो प्रतीक शास्त्र है, प्रतीकवाद तो नहीं मैं कहूंगा वहां पे, प्रतीक शास्त्र जो है सनातन धर्म का, और आप सनातन धर्म में जो अलंकारों का प्रयोग होता है, विशेषकर से जहाँ पर उपमा यमक और श्लेष अलंकार इत्यादि का उपयोग होता है, वो यदि आप नहीं समझते, आप इसका उत्तर ठीक से दे ही नहीं सकते। और यदि वो समझते हैं तो इसमें आपको 250 से 250 नंबर मिलेंगे, और इसकी जानकारी हम और आप तो दे सकते हैं इनको, लेकिन ये दृष्टि और विजन तो नहीं दे सकते, ना बाइजू दे सकता है। आप क्या कहेंगे?
हाँ बिल्कुल ठीक है। वो तो इसमें भी एक स्पिन क्रिएट कर देंगे कि जो सिंह है वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को सिंबलाइज करता है, कि यहां पर क्यों हाँ वो ऐसे ही करेंगे कि जो वृषभ है वो महिषासुर था, जो हमारे लिए इंडिजिनस था, यहाँ का मूल निवासी था, आर्यन ने आके वो महिषासुर मर्दिनी ने आके उसको मार दिया। तो उस तरह की कहानी लिख देंगे और
और
जो चेक
बेचारा
करने वाला
बेचारा
उनको
बच्चा जो
भी
है वो फेल हो जाएगा, उसको ढाई
हाँ
सौ में से
एग्जैक्ट
0 मार्क्स मिलेंगे। वो वोक तो बन जाएगा लेकिन एग्जाम नहीं क्लियर कर सकता।
क्योंकि उनको तो मिथक का मतलब है कि यहाँ की जितनी चीजें हैं उनमें ये वो कॉन्सेप्ट लेके आना ही है कि यहाँ पर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, यहाँ पर उत्तर और दक्षिण की लड़ाई थी, आर्यन द्रविड़ की लड़ाई थी। तो सिंबोलिज्म में भी वो यही लेके आएंगे। वो इतनी छोटी मानसिकता है संजय जी कि जो आप कह रहे थे अलंकार और विशेषण, ये तो ये चीज वो कभी सोच भी नहीं पाएंगे मुझे लगता है। और बाइजूस का तो मैंने फिजिक्स का कंटेंट देखा था, उसमें इतनी गलतियां हैं, मतलब फैक्चुअल इनकरेक्शंस है। एक तो होता है ना कि आपने कोई अपना इंटरप्रिटेशन दिया, हालांकि फिजिक्स में इंटरप्रिटेशन का स्कोप कम रहता है, लेकिन फैक्चुअली इतनी सारी गलतियों के कंटेंट में कि मुझे लगता है कि माँ बाप के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होता है, जो बेचारे अपनी कमाई का इतना बड़ा हिस्सा इन लोगों को देते हैं और फिर वहां पर सेकंड थर्ड रेट लोग बैठे हुए कंटेंट बना रहे हैं। और मेरे ख्याल से बाकी सब्जेक्ट्स में भी यही हालत होगी, अगर फिजिक्स में है तो बाकी में भी सेम ही।
हाँ, ये कोई ये बता रहे हैं दिव्य कीर्ति वाले, कोई इनका उत्तर आया कि साहब उन्होंने तो इसको अशोक की लाठ से कनेक्ट कर दिया था, उनकी इतनी ही है क्षमता कि वो जो सिंह को
हाँ
और वृषभ को केवल अशोक की लाठ में देख सकते हैं, इसके बियॉन्ड तो देख नहीं सकते। उनको ये ध्यान नहीं है कि वृषभ किसका वाहन है, शिव जी का वाहन वृषभ क्यों है, ये मुझे नहीं लगता कि बायजू और दिव्य कीर्ति और अवध ओझा बता भी सकते हैं या उसके ऊपर विचार भी कर सकते हैं। वो इस पर सिंह और वृषभ में सिंह जो है वो देवी का वाहन है और वृषभ जो है नंदी वो शिव जी का वाहन है, और पार्वती जी जो हैं वो सिंह की सवारी करती हैं, वो वृषभ की सवारी करते हैं, वो संसार में शिव और शक्ति के प्रतीक हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह बात क्या ये तीनों समझा सकते हैं? यदि नहीं तो बच्चा इसमें कितने मार्क्स लाएगा?
इसमें नेगेटिव मार्किंग है क्या अभी?
नहीं, नेगेटिव नहीं है, ये तो पॉजिटिव मार्क्स
मजाक कर
लाएगा।
रहा हूँ, सब्जेक्टिव में नेगेटिव नहीं होती, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये वर्ल्ड व्यू जो है, जो कॉस्मोलॉजी है सनातन धर्म की, इस तरह के प्रश्न का उत्तर वो लोग पहली बात तो जानते ही नहीं होंगे, और कहीं जान भी ले होगा तो उनका नैरेटिव का वो एजेंडा इतना स्ट्रांग है कि उसको कभी प्रेजेंट भी नहीं करेंगे। और जो मैं पहले कह रहा था कि इसमें भी वो कहीं ना कहीं वो कि यहाँ पर तो पेट्रियार्किकल माइंडसेट को ले आएंगे। और ये जो संजय जी आपने बात बोली ना कि जब हम सिंह पर माता की सवारी की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए एक तरह से ये अगर उनका नैरेटिव जो चलता है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का, तो ये बिल्कुल उसको इन्वर्टेड दिखा सकते हैं। यहाँ पर देवी माँ है जो स्थापित है सिंह के ऊपर, जिसे अगर आप टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बोलते भी, तो उसके ऊपर भी जो राइड कर रही है, जो उसको सवार उसकी सवार है, वो देवी माँ है उसके ऊपर।
जी, और इसी में हम और आगे इसको लेके चलते हैं क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं तो इससे डायरेक्ट रिलेट कर रहा हूँ कि ये प्रश्न जो है किसी दिव्य कीर्ति और अवध ओझा और बायजू से पढ़ा हुआ लड़का जो है वो कैसे इसको अटेम्प्ट कर पाएगा, क्योंकि वहाँ तो नरेटिव ही अलग चलता है, वहाँ तो मुगलों की हिस्ट्री भी अलग तरह से ही पढ़ाई जाती है।
कहीं
अब
ये तो नहीं हो जाएगा कि जो सिंह है हिंदुस्तान में, तो देखिए सिर्फ गुजरात में बचे हैं, इनको तो मुगल अपने साथ लेके आए थे। कोई कोई बड़ी बात नहीं, ये भी कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि खान पान में तो बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं कि ये सब तो हमें मुगलों ने ला के दिया है, जबकि थोड़ी सी भी
मैं
जो
इसी जनरल स्टडीज फर्स्ट के पेपर को फिर पुनः शेयर करता हूँ। इसका 19वां जो प्रश्न है इसको हम लगता है हम सिनारियो कर सकते हैं कि भाई दिव्य कीर्ति वाला बच्चा क्या लिखेगा, अवध ओझा वाला क्या लिखेगा, बायजूस वाला क्या लिखेगा और खान सर वाला क्या लिखेगा। तो ये कहते हैं कि साहब कि क्या सहिष्णुता सम्मिलन एवं बहुलता मुख्य तत्व हैं जो धर्म निरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं। अब इन्होंने इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म की बात यहाँ कर ली। अब इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म को आप जरा जरा थोड़ा सिनेरियो बना के बताएं कि ये तीनों लोग किस तरह से बताएंगे।
अच्छा देखिए ऐसा है ना कि वो मुझे उनकी एक टर्म नहीं याद आ रही ओझा जी की, हाँ एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी, कि जब इस्लाम आया, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी यहाँ पर लेके आया, उमर उमर बिन अल अख्ताब वो लेके आए थे। अब पहले जिन दर्शकों को
उमर
नहीं
बिन
पता
अख्ताब
है
यहां
कि
से कहां से आ गए? खताब
नहीं, हम तो सब चीज में वो लेके आएंगे ना, क्योंकि हम इकरा वाले हैं।
तो उमर बिन खत्ताब तो यहाँ है नहीं, वो तो पैक्ट ऑफ उमर उनका जो जिम्मा है वही फेमस है, वो तो जिम्मा है उनका
हाँ
कंट्रीब्यूशन।
अरे यही तो आप समझ नहीं रहे हैं, देखिए उन्होंने किस तरह से इंक्लूड किया सबको। ये भारतीय सेक्युलरिज्म हमने वहीं से तो बोरो किया है,
अच्छा, वो
वो जो
जिम्मा
पैक्ट।
सेक्युलरिज्म
हाँ हाँ नहीं, आप हंस रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप ठीक से नहीं समझे इसको। समझे देखिए इसको मैं
दर्शकों आप
एक्सप्लेन करने
प्रश्न
की कोशिश
पूछना मत भूल
करता
जाइएगा, प्रश्न
हूँ।
पूछते रहिएगा जी।
हाँ रुकिए, पहले समझ लीजिए कि आपने कहा सही क्षमता, यदि हमारे ये जो इस्लाम की जो एनलाइटन एस्टोक्रेसी है इसके अंदर यदि ये सहिष्णुता नहीं होती तो उन्होंने तो सबको मार काट दिया होता ना, उन्होंने जिम्मी बना लिया उनको। देखिए कितनी कितनी उमदा कंसेप्ट लेके आए वो कि तुम अब हमें पैसे देते रहोगे तो हम तुम्हें जीवित छोड़ेंगे। कितनी महानता, आप ये नहीं देख रहे,
सर्वाइवल
आप
टैक्स।
उसको नेगेटिव, हाँ जी नेगेटिव मत लीजिए, उसको पॉजिटिव लीजिए। इसी को इंक्लूसिवनेस कहते हैं कि हमने उनको भी इंक्लूड कर लिया, सांस लेने दी उनको, सिर्फ उनसे कुछ पैसे तो लिए ना, पैसे हमने अपने खजाने में इंक्लूड कर लिए, तो इंक्लूसिवनेस है। और उनको जीने दिया, ये उनको जीने दे, ये हमारी सहिष्णुता है। ये सब हमने इस्लाम से लिया है। ये जो भारतीय मानक है ना, जो इंक्लूसिविटी, ये सारी की सारी हमने उस एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी से ली थी। पता नहीं आप समझ पाए या नहीं, मैं कैसे समझाऊंगा, और क्वेश्चन
कोशिश
है
कर
तो
रहा हूँ,
पूछिए।
बहुत मुश्किल से कोशिश कर रहा हूँ इसको। अब इसी में अगर ये प्रश्न हो जाता है तो फिर इसमें एक और प्रश्न आया था फैमिन के ऊपर, तो उस फैमिन का तो फिर ये क्या जवाब देंगे,
फैमिन के लिए तो आप
वो
क्वेश्चन ना
कठिन हो
लिखाए, मैं
जाएगा।
वैसे ही आंसर दे देता हूँ, वो तो मैं वैसे ही आंसर दे देता हूँ आपको।
जी
हाँ देखिए, इस्लाम का जहां पर उद्गम हुआ वहां पर पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, तो उन्हें वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, किस तरह से बांध बनाने, वो सब पहले से ही आता था। तो जब वो हमारे देश में है जहां पर पानी होता ही नहीं था, तो यहाँ पर उन्होंने पानी के बड़े बड़े डैम बनाए, यहाँ पर लोगों को सिखाया कि पानी को संचित कैसे करना है। तो इसलिए उनके आने के बाद यहाँ पर जो फेमाइन थे वो आने बंद हुए, उससे पहले तो इस देश बिल्कुल लुटा
बांध तो
पिटा
एक
था यहाँ
भी
पर।
बनाया उन्होंने, आप क्या कह रहे हैं,
हाँ जी क्या
बांध
कह
तो
रहे हैं,
उन्होंने एक भी नहीं बनाया।
अरे आप फिर वही बात, नैरेटिव से आप सिलेबस से बाहर की बात मत पूछिए। एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में एक्चुअली, समझिए मैं अब सीरियसली बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी में एक्चुअली में उन्होंने क्या किया हुआ है, अब मैं राजा तो बोल रहा हूँ, खिलजी है, कौन है, कोई मुस्लिम है, उसको बता, उसके बारे में क्या बताया कि उसकी प्रशंसा इसलिए की जाती है कि उसने यहाँ पर एक बहुत बड़ा वो वाटर बॉडी क्रिएट करके दी थी पहली बार, 7वीं क्लास की एनसीईआरटी में है। मतलब यहाँ जहां पर,
मेरे लिए नहीं
जहां
था, मैंने
पर,
ये किया।
हाँ जी 7वीं कक्षा में दिया, और मेरे पास अभी पुस्तक नहीं है तो मैं दिखाता आपको कि वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट इसी मुसलमान ने आके सिखाया।
अच्छा, और जो साउथ में जो है वो हजारों साल से जो चला रहा था वाटर मैनेजमेंट, और जो यहाँ पर राजाओं में पुरानी परंपरा थी इरिगेशन बढ़ाने की, वो सब बेकार हो गई।
हाँ मैंने अपनी बुक में भी ये एग्जाम्पल दिया है एक जगह पे कि इस तरह से झूठा नैरेटिव भी क्रिएट करते हैं कि मुस्लिम राजा जो थे, क्योंकि उन्होंने पानी का मैनेजमेंट सिखाया इसलिए उनकी उनका सम्मान किया जाता।
अच्छा, तो ये तो बड़ी भारी एक समस्या हो गई, कौन सा उत्तर दिया जाए कौन सा नहीं दिया जाए। लेकिन इतना तो निश्चित है कि जो भी हम उदाहरण दे रहे हैं, जो भी छात्र छात्राएं सुन रहे हैं, उनको यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यदि उन्होंने इस प्रकार के प्रश्नों का ओझा जी और दिव्य कीर्ति जी और बायजू की स्टाइल से उत्तर दिया तो उनको मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, उनको अपना आंतरिक संतोष हो जाए तो वो बात अलग है, और उसको जो है वो ओझा जी शाबाशी इत्यादि दे दे तो बात अलग है। और ये भी है कि मुझे लगता है कि अब एक आवश्यकता हो गई है कि एक एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऐसा बनाया जाए जो इन लोगों के क्लेम्स जो होते हैं कि साहब हमारे इतने क्वालिफाई कर गए और हमारे इतने क्वालिफाई कर गए, और जो भी क्वालिफाई करते हैं जितने क्लेम्स इनके होते हैं उनको यदि जोड़ लें, तो इस वर्ष संभवतः 700 लगभग चुने गए थे, तो 7,000 आपको चुने हुए मिल जाएंगे उनको अगर आप इंडिपेंडेंट कर लें, जितने भी ये कोचिंग
उसमें
शॉप्स चल रही हैं। तो इसलिए है कि कोचिंग शॉप्स को मुझे लगता है कि किसी प्रकार का रेगुलेशन भी आवश्यक है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो एक तरह से पूरी तरह से धोखाधड़ी है बच्चों के साथ, उनके अभिभावकों के साथ।
ये तो एक बहुत बड़ा, एक तरह से मैं तो कहूंगा वॉयलेंस है ये बच्चों के और उनके माता पिता के साथ। पहले तो उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि आप यहाँ आएंगे तो आपको बेस्ट कोचिंग मिलेगी और आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो अपनी हार्ड अर्न मनी वहां पे देते हैं। तो जो आपने एक आंतरिक संतोष बोला, वो भी कितना क्षणिक होगा कि उसको उस समय तो लगेगा कि शायद उसने अच्छा किया। तो एक तो सबसे पहला कि उन्होंने अपना जो पैसा था, हार्ड अर्न मनी था, उसका नुकसान किया। दूसरा, अपने जीवन के जो बहुत मूल्यवान वर्ष थे वो वहां पर उन्होंने वेस्ट किए। वो भी हम इसे पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ मान सकते हैं। लेकिन तीसरा, जो सबसे बड़ा उनकी हानि होती है कि एक जो गलत नैरेटिव अपने दिमाग में वहां से लेके आते हैं, जो फिर कईयों के साथ तो लगभग जीवन पर्यंत वो चलता है, वो सबसे बड़ा नुकसान है। इसलिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इनका कोई ना कोई एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्लेम्स के मामले में जरूर होना चाहिए कि ये जो फर्जी क्लेम्स हैं इनको किसी तरह से रोका जाए, ताकि माँ बाप उसमें उस जाल में फंसे नहीं। और करते क्या संजय जी, कि आपका मान लीजिए एक इंस्टीट्यूट है, तो आपको फोन आएगा कि हम एक टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, जो आपके सबसे बेस्ट बच्चे ना, हम उनको फ्री में करा देंगे। तो लगता है यार बच्चे को एक्सपोजर मिल जाएगा, फ्री में मिल रहा है, उसे फॉर्म भरवा लेते हैं, साइन करा लेते, फिर उसका नाम यूज कर लेते। वो बच्चा सीरीज में पार्टिसिपेट किया या नहीं किया वो मैटर नहीं करता, उसका कितना इम्पैक्ट था वो मैटर नहीं करता, सिर्फ वो एक सिग्नेचर उसने कर दिए फ्री के चक्कर में, उसको लेके ये ढिंढोरा देश भर में पीट लेते हैं उसका। और मैक्सिमम केसेस में तो रिजल्ट आने के बाद घर पहुंच जाते हैं अटैची लेके, वही साहब आपकी फोटो लेनी है और आप ये अटैची रखो और हमें आने दो। और अनफॉर्चुनेटली अपने हम मॉरल स्टैंडर्ड्स अब काफी गिर गए हैं, तो लोग भी सोचते हैं कि चलो यार आज ये पैसे लेके फोटो चलती है तो चला दो उसको, तो माँ बाप भी ऐसा कर लेते हैं। तो इसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए डेफिनेटली, इसमें हमें ये डिमांड करनी चाहिए सरकार से कि इन पे एक ऐसा मैकेनिज्म हो, प्लस ये जो कंटेंट दे रहे हैं उस पे भी अगर किसी तरह से कुछ नियंत्रण किया जा सके तो वो भी होना चाहिए। हालांकि वैसे तो मुझे लगता है कि सिस्टम अपने आप को बैलेंस करने में चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, पर यहाँ पर क्योंकि झूठ पढ़ाया जा रहा है और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो रहा है, तो इसलिए मैं अपना बिल्कुल जो बेसिक है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसके अगेंस्ट जाके कहता हूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑडिटिंग मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए, ताकि ये इस तरह की झूठी चीजें ना पढ़ा सके। वो
वैसे
हाँ
एक और मैं
जी
प्रश्न बताऊंगा, मुझे लगता है ये ट्रैप है बच्चों के लिए, और जो दिव्य कीर्ति और इत्यादि के यहाँ से जो पढ़े हुए हैं, विजन और दृष्टि, वो इसमें फंसेंगे। ये मैं शेयर कर रहा हूँ, ये है जनरल स्टडीज पेपर 3 का 20वां प्रश्न, और ये कहता है, नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है। अब इसके आगे जो है, ये मैं बच्चों से एक बार कहना चाहूँगा कि यूपीएससी के जो भी प्रश्न हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसमें हिडन ट्रैप्स होते हैं हमेशा, और वो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप सोचें। 5 मिनट केवल क्वेश्चन को पढ़ने में लगाना चाहिए अच्छी तरह से। हालांकि आजकल जो है, आपको 4,000 शब्दों में उत्तर देने हैं और समय आपके पास केवल 3 घंटे, 3 घंटे में 150 शब्दों के 10 प्रश्न और 250 शब्दों के 10 प्रश्न, इतने प्रश्न होते हैं। तो ये बहुत कठिन कार्य है, लेकिन यू शुड बी वेरी क्विक टू ग्रास्प द क्वेश्चन। ये है इसमें, ये इन्होंने ये आपको दे दिया पहले, तो ये ट्रैप दिया है, यह है ट्रैप। और जो भी दिव्य कीर्ति, बायजू इत्यादि में जो पढ़े हुए हैं, वो इसको देख के प्रसन्न हो जाएंगे और इस ट्रैप में सीधे कूद जाएंगे। और इसी के अनुसार, क्योंकि यही इस समय की जो हमारे जो है जिसको कहते हैं, जो मार्क्सिस्ट नैरेटिव है, यही है। लेकिन इसमें आगे क्या लिखा है, इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा कीजिए। वो उभरते हुए मुद्दे क्या हैं? उभरते हुए मुद्दे वे हैं जो हम और आप चर्चा कर रहे हैं इस समय, नक्सलवाद और मार्क्सिज्म और कल्चरल मार्क्सिज्म, और जो हमारे जस्टिस चंद्रचूड़ जी के जो है विरोध में राजीव बल्होत्रा कर रहे हैं, या मैं कर रहा हूँ अनब्रेकिंग इंडिया, या आप कर रहे हैं ब्रेन वॉश्ड रिपब्लिक, या आप आपके और लोग जो हैं वो पूरे इस नैरेटिव को तोड़ने का कार्यक्रम कर रहे हैं, कि पुस्तकें लिखी जा रही हैं, चाहे वो विक्रम संपत लिख रहे हो, चाहे साई दीपक लिख रहे हो, इसके विरोध में लिख रहे हैं। तो उभरते हुए मुद्दे वे हैं, अब इसकी आप इस प्रश्न की जरा आप विवेचना करें।
जी, इसमें संजय इनकी पहली प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि नैरेटिव झूठ पे चलता है इनका, तो ये टाइम वार्प में बैठे हुए हैं और वही चीज ये अपने बच्चों को कन्वे कर देते हैं कि जो नक्सलाइट मूवमेंट है वो नक्सल पार्टी से चला, वो फैक्चुअली थोड़ी चीजें बताएंगे लेकिन उसमें जो तड़का उन्होंने लगाया होगा वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहां तक उन्हें पहुंचने ही नहीं देगा कि जो उभरते हुए मुद्दे हैं वो ये हैं कि ये जो एक मूवमेंट क्रिएट की गई थी देश को सैबोटाज करने के लिए, कि आज का जो मुद्दा है वो ये है कि लोग इसको पहचान रहे हैं और इवन इसके इसके अगेंस्ट मूवमेंट चल रही है आज पूरे देश में, जिसे आप इंटेलेक्चुअल लेवल पर तो डेफिनेटली देख सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा इसको ग्रास्प के बिना आंसर देगा, अब वहां वो क्या पढ़ेगा, ये इनको क्या पढ़ाएंगे जिनके आप नाम ले रहे हैं, उसको सैनिटाइज करके प्रेजेंट किया जाएगा, गांधियंस विद अ गन, जैसे आपको याद हो उसने बोला था एक लेफ्टिस्ट ने कि ये एक तरह से रिवोल्ट है अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, अगेंस्ट पेट्रियार्की, अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस। तो अगर वो बच्चा वो आंसर देगा तो डेफिनेटली वो ट्रैप में फंस गया जो पेपर सेट करने वाले ने डाला होगा, और वो जो वो वाले आंसर देगा जो इनको दिव्य कीर्ति ने या ओझा ने या खान ने दिए होंगे, तो वो उस एक बबल से बाहर निकल के आंसर दे ही नहीं पाएंगे।
बिल्कुल। तो आइए अब हम दर्शकों के प्रश्नों को ले लेते हैं क्योंकि तो समय काफ़ी हो गया है। उससे पहले सभी से अनुरोध है कि कृपया आप इस चर्चा को, इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। 5 और 6 नवंबर को हमारा जो एक वार्षिक उत्सव होता है वो होने वाला है, नीरज अत्री जी भी उसमें पधारेंगे, तो आप लोग खुलकर सपोर्ट करें जिससे
और
हम उस कार्यक्रम को
उसमें
सफल बना सकें।
संजय उसमें ऐड कर दें कि ये वो उत्सव है जिसने जयपुर लिट फेस्ट की वाट लगा रखी।
जयपुर लिट फेस्ट वो तो इवेंट है, देखिए उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यह है कि जनरल पब्लिक में उसका कोई क्रेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी इवेंट मैनेजिंग स्किल से भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, तो टाई अप कर लेते हैं स्कूल से, कॉलेजेस से, इधर उधर।